الله 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 الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسرى وزر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے اس سے متعلق کل گزارشات پیش کی ہیں, اور جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہیں اسے گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں اس کو سیدھی راہ پر کر دیں. اس آیہ کریمہ کے اس حصے میں وہ پہلو بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کی چاہت کوئی کر رہا ہے, جس رستے کا کوئی انتخاب کر رہا ہے, اللہ کریم نے یہاں اس پہلو کو ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہیں اسے گمراہ کر دے. انسان کے تخلیقی مقاصد جو قرآن کریم بیان فرماتے ہیں اس میں اللہ کریم کی عبادت کرنا ہے, اور اس عبادت میں مکلف مخلوق اور غیر مکلف مخلوقات جتنی بھی ہیں اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے, وگرنہ تو قرآن کریم ہر شے کے اللہ کے حضور تسبیح کے بیان اس حد تک بیان فرماتا ہے کہ کسی شے کا جو سایہ ہے وہ بھی اس کے حضور جو ہے وہ تسبیح کرتا ہے, اس کے حضور وہ بھی سر سجود کسی نہ کسی پہلو سے وہ بھی ہے. اب جہاں سایہ تک, سائے کا اپنا وجود ذاتی الگ سے نہیں ہوتا, کسی شے کے وجود کا سایہ پیدا ہوتا ہے, لیکن چونکہ سایہ بھی ہے کسی درجے میں اس کو بھی شکل یا وجود یا کوئی پہلو حاصل ہوتا ہے, وہ بھی اللہ جل شانہ کے حضور سر بسجود ہے, اس کی تسبیح جو اس کے پہلو میں اللہ کریم کا حکم ماننا وہ بھی مان رہا ہے. تو یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جسے چاہیں اسے گمراہ کر دیں, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ جن کا گمراہ ہونا لازم ہے. یہ وہ حصے ہیں جو انسان اپنے کردار سے, اپنی نیت سے جس راہ کا تعین کرتا ہے اس منظر کو پاتا ہے. اس پہلو پر قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ ہیں, اور دوسرا پہلو جو فرمایا وَمَنْ يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جس کو چاہیں اس کو سیدھی راہ پر کر دیں. تو میں تلاوت کرتے ہوئے آیہ کریمہ دیکھ رہا تھا جس میں اسی پہلو کے بیان کے ساتھ قرآن کریم ہی جواب ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, آپ فرما دیجئے میرے حبیب, آپ ارشاد فرما دیں, مخلوق کے خدا کو مطلع فرما دیں کہ یہ جو راز ہے, یہ جو رستہ ہے, یہ جو مقام یا منزل ہے, اسے جو اس پر جو گامزن ہے اسے کس پہلو کی ضرورت ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں, یہاں بھی پہلے یہی حصہ بیان فرمایا, اور جو ان کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی متوجہ اللہ ہوتا ہے, من اناب, اس کو اپنی طرف راستہ دکھا دیتے ہیں. اب یہ جو حصہ تلاوت ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہیں اسے گمراہ کر دیں, تو بنیادی طور پر کوئی بھی جو نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ قرب الہی کے رستے پر چل سکتا ہے, وہ ایمان حاصل کر سکتا ہے. اب جس ماحول میں وہ ہے, جس راہ کو اس نے چاہا, جس پہلو سے اس نے ارادہ کیا, اس طرح کے وہ معاملات کو दुनिया की जिंदगी में पाता गया और उसी तरफ को चल पड़ा। हम ये समझते हैं कि मैं चाह रहा हूँ और उस चाहने पर जो कुछ हो रहा है वो भी मेरी अपनी जो कुव्वत फैसला है उसके बदले हो रहा है, या मेरे कुव्वत बाजू से हो रहा है, या अक्ल व दानिश से कर रहा हूँ। बंदा अपनी राह मुतय्यन करता है, चॉइस करता है, चाहता है, फिर जो कुछ होता है फिर उसका इख्तियार नहीं है। जिस तरह के राह को चाहा उस तरह के राह के जो है मंजिलें वो पाता चला जाता है, उसी तरह के हालात उसको मिलते चले जाते हैं। और नेकी और बदी के पहलू पर जो जो उस रास्ते के मुसाफिर हैं उस नीयत के मुताबिक उसे वो मुयस्सर आते चले जाते हैं। अगर तो उसने राय हक को इख्तियार किया, उस तरफ की उसने नीयत की, तो उसको उस तरह के हालात भी मुयस्सर आएंगे, उस तरह के लोग और महाफिल भी मुयस्सर आएंगे। अल्लाह करीम सबब फरमाते चले जाएंगे, कोई ना कोई पहलू हिफाजत का नसीब होता चला जाएगा और वह अपनी ईमान की जो पुख्तगी है उसमें तरक्की करता चला जाएगा। दूसरे हिस्से में जिसने चाह कि शायद दुनिया की जो जाह जलाल है या दुनिया के जो ताल्लुकात हैं या मखलूक खुदा में जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की हैसियतें दी हैं उनका ताल्लुक उसे मुकद्दम है, या वो ये समझता है कि मैं अपनी अक्ल व दानिश से इस दुनिया को कमा सकता हूँ या हासिल कर सकता हूँ, या दुनिया की ताकत जो है इसे उसने अपना आखिर समझा, तो उस तरह के पहलू उसको मुयस्सर आते चले जाते और वो ये समझता है कि मेरा कमाल है। और साथ फिर जो शैतान मर्दूद है वो जितने अमाले बद करता है उसे खूब करके दिखाता है। और हम अपने मामूलात में, माशरों में, मेल जोल में ये चीज़ें देखते हैं कि जहाँ गलती होती है शायद ऐसा होता है कि ये एहसास हो कि हाँ गलत किया है, हर गलती को फिर जवाब दिया जा रहा होता है और दूसरों की बात की बजाय अपने मामूलात को देखें। गलत हो जाना दानिश्तन या ना दानिश्तन ये एक पहलू है, उस गलत हो जाने को सही करार देना और उसके लिए शहादत देना ये और बात है। तो गुनाह का हो जाना और गुनाह को गुनाह समझना ये फिर वो पहलू है जिसमें माफी का सबब नसीब हो सकता है, ये वो रास्ता है जिसमें माफी नसीब हो सकती है। लेकिन जब गुनाह को गुनाह ही ना जाना जाए और उसके लिए जवाज घड़े जाएं और अपने आप को सही करार दिया जाए तो फिर ये वो पहलू हैं जो बेहदायत होने की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाएं और इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाएं। और जब यहाँ जो मैंने दूसरा हिस्सा आपके सामने तलावत किया है कि जहाँ अनाबत इलाही का इरशाद फरमाया गया कि रजू इल्ला करना, वहाँ उससे अगला एक हिस्सा और एक वस्फ बयान फरमाया गया और वो वस्फ इस अनाबत को और तरक्की का सबब बनता है। अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लज़ीन आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के जिक्र से उनके दिलों को इत्मीनान होता है। अब पिछली आया करीमा में है कि आप फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं और जो उनकी तरफ रुजू करता है यानी मुतवज्जे इलल्लाह होता है उसको अपनी तरफ रास्ता दिखा देते हैं। मुतसिल ये दूसरा हिस्सा बयान फरमाया गया और ये कितनी अजमत की बात है कि जिसे अनाबत इलाही नसीब उसे अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी जात जो याद है वो अता फरमा दी, उसे अल्लाह करीम ने अपनी याद की जो सिफत है वो अता फरमा दी और वो सिफत ऐसी है कि जो कुलूब को इत्मीनान देती है। जितना भी इंसान दुनिया की जिंदगी में महव होता है, जितनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है या जितनी दुनिया के माल व दौलत को चाहता है, उस सारे के पीछे कारगर उसकी दिल की ख्वाहिश होती है। वो दिल की बेइत्मीनानी उसे सरगर्दां रखती है, वगरना तो अगर दिल मुतमिन हो तो एक फकीर का अगर दिल मुतमिन है तो वो बादशाह से ज्यादा सहूलत में है। और अगर कोई बादशाह है जाहिरी तौर पर उसके पास सल्तनत है और दिल का इत्मीनान नहीं है तो आम फकीर से ज्यादा भी उसकी हालत जो गुजरी गई। तो अल्लाह करीम ने जब फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के जिक्र से उनके दिलों को इत्मीनान होता है तो ईमान के साथ अल्लाह जल्ला शानहू की जो याद है جب یہ نصیب ہوتی ہے تو اطمینان کا سبب بنتا ہے, اور یہ اطمینان دنیا کی زندگی میں تحمل پیدا کرتا ہے, بردباری پیدا کرتا ہے, ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. اور وہ صفات نصیب ہوتی ہیں جس طرح قرآن کریم میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع المحسنین. تو بے شمار پہلو وہ صفات نصیب ہوتی ہیں جس سے اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, معیت ذات باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے, اور ہر پہلو جو ہے وہ مزید قرب الہی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. اور انسان اس باریکی کو بحثیت مسلمان نور ایمان کی روشنی سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اطلاع دے رہا ہے, جس کے بارے میں اللہ کریم نے بڑی بڑی باریکی اور بڑی وضاحت تک چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ جہان فانی ہے, اس جہان کی اشیاء فانی ہیں, کل من علیہا فان, یہ خواہشات جو ہیں یہ بھی فانی ہیں, یہ جو چاہتے ہیں جو ذرا ہیں یہ فانی ہیں. جب کوئی شے نہیں بچے گی تو وہ جو چاہ رہا ہے اس کی چاہتے کہاں بچے. تو اس حقیقت کو جب نصیب ہونا ہے تو پھر اطمینان نصیب ہوتا ہے. بیمار ہے اور بیماری جو ہے اللہ کریم صحت عطا فرمائے, صحت بہت بڑی نعمت ہے, لیکن جب بیماری ہے یہ زندگی کی حقائق ہیں, ساتھ منسلک ہیں. اب جو بیمار ہے وہ اگر صحت مند کو دیکھتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی تو بہتر اس کی ہے جس کی صحت ہے. اپنے پہلو میں وہ دیکھتا ہے تو تکلیف ہے, بیماری ہے. اور اگر اسی جہان فانی کی حیات کو دیکھے تو بے شک وہ اس پہلو کو جائے گا کہ میں میرے جو حالات ہیں یہ تو درست نہیں. ایک اعتراضی پہلو پیدا ہوگا, اسے کوئی لفظ دے لیں, اسے کسی پہلو سے اس کا اظہار کر لیں, لیکن ایک اعتراضی پہلو ہوگا کہ میں کیوں بیمار ہوں. اب جب وہ یہ سوال آئے گا تو یہ سوال کس طرف جا رہا ہے, اس نظام حیات کا مالک کون ہے, یہ تخلیق کس کی ہے, خالق کون ہے. تو وہ جو اعتراضی پہلو آئے گا وہ اللہ کی تقسیم تک چلا جائے گا, مزید بدبختی پیدا ہوگی, مزید دل میں جو ہے وہ نفاق پیدا ہوگا, تکلیف پیدا ہوگی, اطمینان حاصل نہیں کر سکے گا, چہ جائے ظاہری طور پر اس کے پاس بے شمار سے. لیکن جب ایمان نوری ایمان نصیب ہوتا ہے اور وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ جہان فانی ہے, اللہ کریم نے کس کو کب کس حیثیت یا کس صحت سے پیدا فرمایا ہے, کس کو کتنی فرصت عطا فرمائی ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں, اور اس کے فیصلے اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت کے ہیں, بڑے پیار کے ہیں. یہ جو نقصان اٹھانے کے پہلو ہیں یہ مخلوق اپنے ساتھ خود ظلم کرتی ہے, یہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے, یہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں. اب راہ متعین جو ہے وہ بھی ہے, اور جو اس راہ کو ہم چن رہے ہیں اس کے مطابق پھر فیصلے آئیں گے. تو جب دلوں کو قرار نہیں آئے گا تو صورت اعتراض ہی آئے گی, اور اعتراض جا کر خالق حقیقی تک بات جائے گی. لیکن جب یہ سمجھ آ جائے گا نور ایمان سے, یہ وسعت نظر نصیب ہوگی کہ یہ سارا کچھ عارضی ہے, حقیقی زندگی تو اخروی ہے جہاں میں شرن. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندے مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چب جائے جانے کتنی اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے, کتنے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے, تو پھر وہ یہاں دیکھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو نہیں ماپتا. پھر وہ جانتا ہے کہ اگر یہ کوئی تکلیف ہے تو یہ میری کسی غلطی کے جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا, اگر یہ مجھے مسائل یا تکالیف میں میں ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے مجھے اپنے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. وہ یہاں دیکھ ہی نہیں رہا, وہ زندہ یہاں ہے, زندگی وہاں کے لیے گزار رہا ہے جہاں جانا ہے. تو اللہ کریم وہ موقع عطا فرمائے. تو یہ اس سے اگلا جو حصہ فرمایا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, فیصلہ فرما دیا, حتمی بات ارشاد فرمایا. حلب پیچھے جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے, बड़ी साफ और बड़ी वाज़े बात है, उसके बावजूद मजीद जो है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो यकीनी तौर पर है अल्लाह के जिक्र से ही दिल इत्मीनान पाते हैं। कुरान करीम जब किसी हिस्से का इरशाद फरमा देता है तो उसका मुकाबल हिस्सा जो है उसका अज़ खुदरत हो जाता है। अब अगर किसी को ताल्लक माल्ला नसीब नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो इत्मीनान हासिल कर सके। अब ताल्लक माल्ला में ये पहलू जो अल्लाह जल्ला शानहू ने अकायद या ईमानियात के हिस्सों में अता फरमाए, जिसे फिकी अम्मा ने सहल करके एक एक चीज पर बहस करके हमारे लिए सहल और आसान हिस्से तहरीर कर दिए, उसके साथ इबादात आती हैं, इबादात के दर्जे बयान हैं कुरान और हदीस में बयान हैं, उसके तहत जो फिकी जरूरियात हमारे लिए हैं वो उलमाए कराम ने उसे तहकीक करके तहरीर करके सहल करके हम तक पहुंचा दिया। तसलसल से मखलूक को पढ़ने पढ़ाने का एक हिस्सा नसीब हो रहा है, ये किसी जात का एहसान नहीं है सिवाय ज़ाति बारी ताला की। क्योंकि जिसे ये तौफीक नसीब हो रही है, जो दीनी इल्म हासिल कर रहा है वो किससे हासिल कर रहा है, उस इस्तेदाद से जो रब कायनात ने उसे दी है, चाहे उसमें अपनी नज़र को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे उसमें अपनी समात को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे उसमें अपनी याददाश्त को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे उसके लिए चल कर जा रहा है, चाहे उसे सुनकर हासिल कर रहा है, कोई पहलू ऐसा नहीं है जो किसी का जाती हो, हर शय उसकी अता की हुई है। तो उसका एहसान के दीनी हिस्से के तसलसल में किसी को इस खिदमत का मौका नसीब हो जाए तो फिर इसी तरह इबादात के साथ जो मामलात के पहलू आ जाते हैं, और मामलात की जब बात आती है तो यहां एक बात समझने की जरूरत है। हम ये कहते हैं कि उखरवी जो हयात है वहां हकूकुल्ला की जो है वो खैर अल्लाह माफ फरमा दे, तो जरूरत इस बात की है कि हकूकुल इबाद पूरे किए जाए। हकूकुल इबाद कहां से नसीब हुए, हकूकुल इबाद की तालीम जो नसीब हो रही है वो कहां से, ये तरबियत मिल रही है कहां से नसीब हो रही है, ये कैसे हो सकता है कि जहां से नसीब हो रही है वहां का ताल्लुक छोड़ दिया जाए और जो हिस्सा नसीब हो रहा है वो हिस्सा जो है वो नसीब रहे और जो मयसर आ रहा है वो बंदे के इख्तियार में आए। तो इंसानियत सिखाई ही इस्लाम ने हकूक व फराइज की तकसीम मुसावात में मुहैया ही दीन इस्लाम फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक हिस्से को इख्तियार फरमाया और हम तक पहुंचने का अल्लाह करीम ने सबब अता फरमाया। अब जब नूरी ईमान नसीब हो, इबादात इख्तियार करना नसीब हो, मामलात में गलत और सही की पहचान रहे, तो बंदा इसके तहत जिंदगी बसर करता हुआ दार फानी से अपनी अजली जो मंजिल है उसकी तरफ रवाना हो जाए। तो अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए, करम और एहसान फरमाए तो उसकी रजा का सबब हो जाता। और ये जो अगला हिस्सा याद इलाही का बयान फरमाया जा रहा है, इस सारे पहलू में ये कैफियत कल्बी का जो हिस्सा है जिसका तसलसल सदरी उलूम के तहत है, जो सीना ब सीना एक मुतसिल निजाम जिस तरह उलूम जाहिर आ रहे हैं इसी तरह ये उलूम बातिन का जो हिस्सा आ रहा है। जब कैफियत कल्बी की बात करेंगे जिससे अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अब ये किस दर्जे की है अल्लाह की याद। अल्लाह की याद का वो दर्जा है जो जाहिरी पहलू में है, क्योंकि जिक्र की तो सारे हिस्से जो जिक्र के किस्म में आते हैं, अमली जिक्र है, लिसानी जिक्र है, ये खफी जिक्र है। अब इसका वो पहलू जो जाहिरी हिस्सों तक है, अल्लाह करीम कबूल फरमाए एहसान फरमाए तो ये उसकी रजा का सबब है। जब लहद में उतरेगा, जिसे जाहिरी तौर पर तो हम खोद रहे हैं लेकिन वो एक नया जहान है, अलग जहान है, उस जहान में जाएगा तो उसकी रजा के जो पहलू हैं वो नसीब हो, अल्लाह राजी हो। अब जब दूसरे हिस्से को देखेंगे, इसी पहलू का वो हिस्सा जो खफी है, कि वो नसीब हो जाए और इतनी अल्लाह की याद नसीब हो कि लम्हा लम्हा लहजा लहजा कुर्ब इलाही इस तरह महसूस हो कि हर अमल पर जो है वजूद कांप जाए कि जो कुछ कर रहा हूं उसके हजूर है, उसके सामने है। फिर इससे बढ़कर, ये तो अमले जाहिर है ना जो मामलात है, इससे बढ़कर जो कुर्ब इलाही की अपनी चाशनी है उससे बहुत बाला है। और जब वो उस हिस्से को देखेगा तो मौजूद सामीन कराम, एक हिस्सा नसीब हुआ जाहरी अहकाम के अमल में लाने से उसकी रजा का। जब ये दूसरा पहलू नसीब होगा जो कैफियात का आमिल है, फिर ये उसकी रजा के साथ उसके कुर्ब का सबब बनता चला जाएगा। इन दोनों हिस्सों में जो मेहनत की जरूरत है, इन दोनों हिस्सों को जो समझने की जरूरत है, इसका जहान ये है। ये हकायक तो खुल जाएंगे बरजख में, लेकिन हल वहां नहीं है, हल यहां है। बरजख से भी ज्यादा बारीकियां खुल जाएंगी रोजे माशर, लेकिन इसका हल वहां भी नहीं है, इसका हल फिर यहां है। अल्लाह करीम ये तौफीक अता फरमाए रखे कि तौफीक की इबादत भी हो और खालिस अल्लाह के लिए हो, इबादात में भी सौदे ना हो, इबादात में भी ख्वाहिशात न हों। ये जो फानी जहान की ख्वाहिशात हैं, ये जो सौदे हैं जरूरियात जिंदगी के, ये तो समझने की जरूरत है कि रब्बे कायनात उन्हें भी अता फरमा रहा है जो कुफ्र कर रहे हैं, जो शिर्क कर रहे हैं, जो मुकाबिल खड़े हैं, वो रब्बे कायनात दुनिया के हिस्से तो उन्हें भी अता फरमा रहा है। उसने पैदा फरमाया, उसकी शान है उसने पैदा फरमाया, वो जरूरियात भी अता फरमाएगा, ये उसकी शान है। वो रज़ाक है, अता फरमाने वाला है। तो इस गलत फहमी में पड़ जाना कि मेरी जरूरियात ना रुक जाए, ये कम अकली होगी, ये कमजोर ईमान की निशानी होगी। अकलमंदी हम क्या समझते हैं? जरूरियात जिंदगी की तकमील। जब आप फिका से अकलमंदी को समझेंगे, शरीयत से इस पहलू को समझने की तरफ आएंगे, तो समझ आएगी कि अकलमंदी ये है कि अपनी अकल छोड़ दी जाए, सारे इस्तेतात के जराए सिर्फ इस बात पर लाकर खड़े कर दिए जाएं कि जो कुछ अल्लाह और उसके हबीब ने फरमाया उसी में कामयाबी है। जहां भी जाती अकल आती है, चूंकि इंसान, इंसानी वजूद, इसको अगर आप ख्याल करें तो अमूमी तौर पर समझा जाता है कि दिमाग जो है ये हुक्मरान है। दिमाग हुक्मरान नहीं है, दिमाग वजीर का दर्जा रखता है। हुक्मरान की जो हैसियत है वो कल्ब है, दिल है। इंसान वो अमल करता है जो उसका दिल फैसला करता है। अब जब वो इन सारे हकायक को अकल से आकर जांचेगा, तो फिर वो अकल उसको फवायद की सूरत में वो हिस्से दिखाएगी कि जिसे अल्लाह जल्ला शानू ने वजूदी इस्तदाद अता फरमाई, वो समझेगा कि शायद मैंने इसे हासिल करना। और जब मैंने इसे हासिल करने की सूरत में आएगा, तो फिर मखलूक खुदा में देखेगा ताकतवर कौन है उससे ताल्लक होना चाहिए, दौलतमंद कौन है उससे ताल्लक होना चाहिए, साहिब हैसियत कौन है उसके साथ ताल्लक होना चाहिए, हुक्मरान कौन है उसके साथ ताल्लक होना चाहिए। मेरे गिर्दोपेश अमूमी हालात में बेहतर हालात किसके हैं, तो किसी न किसी पहलू से वो दुनिया की हैसियतों जो हैं उनके पीछे चलना शुरू कर देगा। हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, जब गैरुल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता होंगी तो जिस दर्जे की वो उम्मीद रखी जाएगी, उसी दर्जे की एक शिर्क की तंद बन जाएगी, एक तार बन जाएगी जो शिर्क की होगी। क्योंकि उम्मीद तो सारी की सारी अल्लाह से रखनी है, जब गैरुल्लाह से उम्मीद रखेगी तो वो फरमाते हैं और फिर शिर्क है क्या, तो वो उस शिर्क के पहलुओं में जाना शुरू कर दे। लेकिन जब वो उसके इस पहलू को कि जो अकल हमें दुनिया की तरफ ले जा रही है, वो इसको अल्लाह और उसके हबीब के हुक्म के तहत लाकर जाती सोच की बजाय नूरे ईमान की कुव्वत से इस हकीकत की तरफ आएगा कि जो कुछ मेरे लिए हुक्म है उस सारे में मेरे लिए जो बेहतरी है, फिर वो तवक्कल इल्लाह की सूरत में उसकी कैफियत जो है वो नसीब होना शुरू हो जाए। कुरान करीम अगर घास के फूटने और वापस खाक होने की मिसाल बयान फरमा रहा है, कुरान करीम अगर सूरज के चढ़ने या चांद के आने की बात बयान फरमा रहा है, कुरान करीम अगर मौसमों के तगैर और तबदल की बयान फरमा रहा है, कुरान करीम अगर आसमान और सितारों की मिसालें बयान फरमा रहा है, कुरान करीम अगर दरख्तों और खोशों के फूटने की मिसाल बयान फरमा रहा है, कुरान करीम अगर एक ही पौधे को एक टहनी में और एक ही उसी किस्म के पौधे को दो टहनियों में बढ़ने की बयान फरमा रहा है, कुरान करीम अगर फलों और उस फलों की मिठास पर बयान फरमा रहा है, कुरान करीम अजनास के एक एक जिन्स के एक बीज के बोने और उसके खोशे में कई उस तरह के जो हिस्से हैं बीज के वो हासिल होने पर बात कर रहा है, तो ये सारी बातें किस लिए हैं कि ये जो सोच है इसकी हदों में भी उसने अल्लाह जल्ला शानहु ने उसको हदायत कैसे अता फरमाया। लेकिन जब इस तफक्कर की कैफियत से वो पलट कर अपने कलब की तरफ आएगा तो जहां जो हाल है वो असरअंदाज। अब यहां अगर अंधेरा है तो उसके मामूलात जिंदगी में नूर नहीं आएगा। अगर यहां नूरी ईमान है और जिस दर्जे का नूरी ईमान है उस दर्जे के फिर उसके अमाल जो है वो सहले होते चले जाएंगे। अल्लाह करीम ने हमें तौफीक अता फरमाई है, अपने नाम पर जमा फरमाया है, और ये जो हिस्सा के गुमराही और सिरात मुस्तकीम के पहलू इस आया करीमा के इस हिस्से में अल्लाह ने बयान फरमाया, जो अनाबत का हिस्सा बयान फरमाया, मुतवज्जे इल्लल्लाह होने का बयान फरमाया, इसमें बड़ा कीमती हिस्सा जो रब्बे कायनात अता फरमा रहे हैं वो जिक्रुल्लाह है। अल्लाह की याद को गैर मशरूत करें, और जो वक्त जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब है उसे जिक्र होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि सांसें अल्लाह के नाम से मुजय्यन हों, वगरना सांस ले रहे होंगे जाहिरी तौर पर हालत जाकिर की होगी, सोचों में कहीं और पहुंचे होंगे। जितना इस बात का ख्याल रखेंगे कि सांसें अल्लाह के नाम से मुजय्यन हों, जितना ये ख्याल रहेगा इतना तवज्जो नसीब होगी जिक्र में, और ये मौके हैं, ये लताइफ, ये मुराकबात, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, चूंकि उसकी रजा के साथ उसके कुर्ब का रास्ता है। अल्लाह जल्ला शानहु अपनी शनासाई मखलूक को दे, ये उसका करम है, चे जाए कि उस शनासाई से बढ़कर अपने रजा तक हिस्से बंदे मोमिन को अता फरमा रहा है, फिर अल्लाह जल्ला शानहु अपनी रजा के साथ मजीद कुर्ब के हिस्से अता फरमाए, ये उसकी अपनी शान है, ये उसके अपने फैसले हैं। अल्लाह करीम मेरा और आपको हामी नासिर हो, और खालिश उसकी रजा की जो है इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन। رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمته.
الله 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 الله